स्वागत है महाभारत की इस क्लास में। आभारी हैं आपके जो बाहर से आए हैं इतनी तेज बारिश में भी। हम आशा कर रहे थे शायद कोई नहीं होंगे और हमें दीवारों से बात करनी पड़ेगी, लेकिन आप सब आए हैं इसीलिए आभारी हैं। ये भगवान की कथा का आकर्षण है। जाने अनजाने में ये आकर्षण बढ़ जाता है, हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। फिर धीरे धीरे ये आकर्षण जो कथा से प्रारंभ होता है श्री कृष्ण के प्रति बढ़ने लगता है, क्योंकि इनकी कथाएं शुद्ध करती हैं। चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, श्रीमद् भागवत हो, भगवद गीता हो, कृष्ण की लीलाएं हो जिनमें कृष्ण गोवर्धन उठाएं या असुरों का वध करें, जो भी लीलाएं, जो भी कथाएं कृष्ण से संबंधित हैं, जब कानों में प्रवेश करती हैं तो हृदय को शुद्ध करती हैं, और शुद्ध हृदय केवल कृष्ण की ओर आकृष्ट होता है। हृदय की शुद्धता का प्रमाण ये है कि वो कितना कृष्ण की ओर आकृष्ट हुआ, यही एकमात्र प्रमाण है हमारे हृदय की शुद्धता का। अन्य कोई प्रमाण नहीं है। कोई कह सकता है कि व्यक्ति को नम्र होना चाहिए। हाँ, नम्रता ये भक्त का लक्षण है, लेकिन वो अपने आप में भक्ति नहीं है। ऐसे कई नम्र लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, उनका हृदय शुद्ध नहीं है। तो हृदय की शुद्धता का एक ही प्रमाण है कृष्ण की ओर आकर्षण, और यही हमारे अज्ञान से दूर जाने का भी प्रमाण है। हमारे ज्ञान को माया से ढक दिया गया है। आवृत्तम ज्ञानमेतेन, जो ज्ञानियों का ज्ञान है उसको आवृत्त किया गया है माया के द्वारा। जितना जीव का ज्ञान आवृत्त होता है, जितना जीव का स्वरूप ढका होता है, उतना वो कृष्ण से दूर होता है, और उतना ही 84 लाख योनियों में नीचे की ओर होता है। जीव की प्रगति, उत्थान, ये अन्य किसी चीज पर आश्रित नहीं है। हम कृष्ण से कितने दूर हैं, बस यही हमारी ऊंची या नीची योनि में होने का कारण है। जो जितना नीची योनि में होता है वो उतना दूर कृष्ण से होता है। जैसे जैसे कृष्ण के निकट आते जाते हैं, चेतना में बदलाव होता है, चेतना बढ़ती जाती है, उतना हम कृष्ण के निकट आते हैं। शास्त्रों में समझाया गया है कि चेतनाओं के कई स्तर होते हैं। एक ऐसा स्तर जहां चेतना पूर्ण रूप से आवृत्त है, उसको आवृत्त चेतना कहते हैं, अर्थात जहां कोई ज्ञान नहीं है कृष्ण का, भक्ति का, अपने स्वरूप का, वो आवृत्त चेतना है। फिर ये चेतना थोड़ी बहुत कली के रूप में आती है, तो कली के रूप में आती है, उस चेतना में थोड़ा बहुत जीव को आभास होने लगता है, अपने आसपास की चीजों का अनुभव होने लगता है, और फिर होती है मुकुलित चेतना। मुकुलित अर्थात बस अब खिलने वाली है, और उस चेतना में व्यक्ति भावनाओं का अनुभव करता है। उसके बाद होती है विकसित चेतना, जहां व्यक्ति ज्ञान का विकास कर लेता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है, हमारे संबंध को भगवान से जानने का प्रयास करता है, और फिर उसके बाद है पूर्ण विकसित चेतना। ये वो चेतना है जहां भगवान से अपने संबंध को जीव पूर्ण रूप से जान जाता है, उसको पूर्ण विकसित चेतना कहते हैं। इन चेतनाओं का वर्णन भगवद गीता में भगवान करते हैं, जहां वो उदाहरण देते हैं आवृत्त चेतना का। जैसे गर्भ में बालक होता है, भ्रूण, और फिर मुकुलित और विकसित चेतनाओं का उदाहरण देते हैं, जैसे शीशे पर लगी हुई धूल या अग्नि से आने वाला धुआं। तो ऐसी चेतनाओं का वर्णन भगवान करते हैं, और इसीलिए कृष्ण की कथा ये आवृत्त चेतना से पूर्ण विकसित चेतना तक ले जाने का एक साधन है। और आश्चर्य की बात यह है कि यही साध्य भी है। भक्ति में भक्ति की क्रियाएं साधन भी हैं और साध्य भी हैं। साधन अर्थात किसी जगह तक पहुंचने का मार्ग, उसको साधन कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से स्टेशन जाना चाहते हैं तो हम गाड़ी में जाएंगे, तो गाड़ी साधन है और स्टेशन साध्य है। या हम यहाँ से गोवा जाना चाहते हैं तो कार में जाएंगे, तो कार साधन है, गोवा साध्य है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में कार और स्टेशन दोनों एक हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, कार अलग है, रेलवे स्टेशन अलग है, लेकिन भक्ति में साधन भी वही है और साध्य भी वही है। हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने का मार्ग भी वही है। भक्ति से हम भक्ति तक पहुंचते हैं। अंतर क्या होता है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कच्चे और पके हुए आम का। कच्चा आम भी आम है और पका हुआ आम भी आम है। साधन भी आम है, साध्य भी आम है, तो अंतर क्या है, रस का। जब आम पक जाता है तो उसमें रस बढ़ जाता है। इसी तरह जब साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त किया जाता है तो वही साधन उस साध्य के रूप में रस प्रदान करता है। ये भक्ति का मार्ग है। तो जो श्रवण आज हम लोग कर रहे हैं इस अवस्था में, ये श्रवण हमें हो सकता है उतना आनंद उतना रस नहीं देता जो रस परीक्षित महाराज को था। 7 दिन 7 रात कोई चिंता नहीं, सोचा नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, कितनी रुचि होगी कृष्ण कथा में, क्या उत्साह होगा। हमारा उत्साह तो 15 मिनट का है, वो भी बहुत हो गया 15 मिनट में अगर आंखें बंद ना हो तो हमें महान माना जा सकता है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमारी शरीर हमारी इंद्रियां हमारा मन हमें कष्ट देने लगता है। तो इसीलिए साधन के द्वारा जो हम श्रवण आज कर रहे हैं, इस श्रवण को करते करते ही हम उस स्तर तक पहुँचेंगे जहाँ परीक्षित महाराज की तरह श्रवण होगा, जहाँ हमें कोई चिंता नहीं होगी, जहाँ केवल कृष्ण का नाम सुनकर कृष्ण का रूप कृष्ण की लीलाएं कृष्ण के गुण हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे, और वो हमारा साध्य है। तो यहाँ भी हम भगवान का नाम लेते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी हमें भगवान का नाम लेना है, कार्य वही है। ऐसा नहीं है कि मुक्त होने के बाद भगवान की कथा नहीं सुननी है, नाम नहीं लेना है, ये सब तो केवल बस मुक्त होने के लिए है, और मुक्त होने के बाद कोई चिंता नहीं, मंगल आरती नहीं आना पड़ेगा, कथा नहीं सुननी पड़ेगी, नहीं। मुक्त होने के बाद तो बड़ी रुचि से ये कार्य करेंगे, वही कार्य है, वही कथा सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज की कथा 100 बार सुन और कहते और कहो फिर से कहो वही कथा। अब क्या बदलाव आ जाएगा ध्रुव महाराज की कथा में, 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार, किस लिए, रुचि बढ़ती है। तो इसी तरह ये कथाएं हैं महाभारत की, रामायण की। श्रील प्रभुपाद भागवत के पहले स्कंद में लिखते हैं कि व्यक्ति को महाभारत रामायण पढ़ना चाहिए, इन कथाओं को सुनना चाहिए। तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, दुर्योधन ने ठुकरा दिया, इतना ही नहीं उनको कैद करने का प्रयास किया, फिर आते समय उन्होंने उस समय फिर वहाँ विश्वरूप भी दिखलाया, और फिर जब श्री कृष्ण निकल आए तो आते समय रथ पर बैठते हुए उन्होंने कर्ण से बात की, कर्ण को समझाया कि तुम राधे नहीं कौंतेय हो, कुंती पुत्र हो, तुम्हें तो पांडवों की तरफ होना चाहिए। कर्ण ने स्वीकार नहीं किया कि मैं उनकी तरफ से युद्ध करूं, लेकिन ये स्वीकार किया कि मैं जानता हूं कि मैं मरने वाला हूं, मैं ये भी जानता हूं कि सारे कौरव मरने वाले हैं, मैंने स्वप्न में देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अब मैं छोड़ नहीं सकता दुर्योधन को। कुंती महारानी भी कर्ण से मिलती हैं। पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुंती महारानी ने बताया कि तुम्हें ये युद्ध नहीं करना चाहिए तुम्हारे ही भाइयों के विरुद्ध, तो उस समय कर्ण ने कहा कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, मैं या अर्जुन, दोनों में से एक निश्चित मारे जाएंगे। तो खैर कुंती महारानी भी वापस आ गईं। अब युद्ध की तैयारी हो रही है। जिसे महाभारत कहा गया है वो दरअसल उन 18 दिनों के युद्ध को कहा जाता है। तो ये युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि अब निश्चित हो गया, सबने प्रयास कर लिया। तो श्री कृष्ण चले गए युधिष्ठिर के पास। अब दोनों जगह का वर्णन बड़ा अच्छा है। जैसे ही श्री कृष्ण गए तो यहाँ क्या हुआ, और जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो वहां क्या हुआ, दोनों तरफ से युद्ध का प्रारंभ हो गया, अर्थात युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। श्री कृष्ण पहुंचे युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर से उन्होंने कहा कि कुछ समय लगा श्री कृष्ण को आने में, तो श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर ने पूछा, बताइए क्या हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने बहुत प्रयास किया, दुर्योधन नहीं माना, बस। तो युधिष्ठिर ने कहा, थोड़ा विस्तार से बताइए, वहां पर भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, किसी ने समझाया नहीं उसको, मूर्ख को, वो ऐसे ही मना कर दिया। तो उस समय उन्होंने बताया, नहीं, सबने समझाया, भीष्म ने समझाया, द्रोणाचार्य ने, गांधारी ने, धृतराष्ट्र ने, सबने समझाया, लेकिन किसी की नहीं माना। तो उन्होंने बताया कि भीष्म ने कहा, भीष्म ने अपना उदाहरण दिया, दुर्योधन सुनो मेरी कथा, मैं जब शांतनु के पुत्र के रूप में था, शांतनु और एक पुत्र की कामना कर रहे थे, फिर सत्यवती से विवाह हुआ, मैंने प्रतिज्ञा ली। ये सारी कथा भीष्म ने बताई कि कैसे मैंने प्रतिज्ञा ली, और फिर कैसे मैंने राजकुमारियों का अपहरण किया और वे लोग उनका विवाह करवाया अपने भाई से, और किस तरह से मैंने राज्य की कभी कामना नहीं की, लेकिन ये जान लो। ये सारी कथा बताते बताते वो कहने लगे कि फिर पांडु और धृतराष्ट्र की बात की, और उन्होंने कहा कि राज्य पांडु का था तो फिर पांडु के पुत्र को मिलना चाहिए, कम से कम तुम आधा राज्य तो उन्हें दे दो। दुर्योधन नहीं माने, गांधारी ने समझाया, धृतराष्ट्र ने स्वयं समझाया। धृतराष्ट्र ने तो उदाहरण भी दिया ययाति महाराज का, और अपने ही पूर्वज यदु का, उनके पुत्र, उन्होंने कहा कि ययाति महाराज के पुत्र थे जिनमें यदु और पुरु दोनों थे, और यदु ये बड़े पुत्र थे, इनको इनकी शक्ति बहुत थी, लेकिन इनको अहंकार हो गया। किस चीज का अहंकार, अपने बल का। उस समय यदु महाराज से शक्तिशाली कोई नहीं था इस पृथ्वी पर, उन्हें अहंकार हो गया, और उस अहंकार में उन्होंने अपने वरिष्ठों का अपमान कर दिया, उनकी बातें नहीं सुनते थे वो, और इसी कारण से ययाति महाराज ने उनको श्राप दिया और उनको राज्य से हटा दिया। तो ये समझाने लगे कि बड़ों की बातों को सुनना चाहिए, वरिष्ठों की बातों को सुनना चाहिए। और तुम जिस राज्य की बात कर रहे हो, फिर उन्होंने उदाहरण दिए कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर व्यक्ति का शरीर पूरा नहीं होने के कारण, शरीर में कोई कमी होने के कारण उसको राज्य नहीं दिया गया। इसी प्रकार मुझे ये राज्य नहीं मिला है, ये पांडु का राज्य है, और क्योंकि पांडु राजा है इसीलिए राजा के पुत्र का अधिकार है राज्य पर। मैं राजा कभी नहीं था, पांडु ही राजा था, और राजा के पुत्र के रूप में युधिष्ठिर का पूरे राज्य पर अधिकार है, लेकिन तुम कम से कम आधा राज्य उसको दे दो, पूरा नहीं तो, क्योंकि युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, धर्म है, पालन करता है, वो कभी विरोध नहीं करेगा। तो इतना सब समझाने के बाद भी श्री कृष्ण कहने लगे दुर्योधन नहीं माना। और फिर उन्होंने कहा मैंने सारे तरीके अपना लिए, साम दाम भेद, राजनीति में चार तरीकों को अपनाया जाता है, साम दाम दंड भेद। साम यानी कुछ बहुत सारा कुछ उपहार, उपहार दाम में दिया जाता है। साम यानी अच्छी समझ दी जाती है, उसको बिठा के समझाया जाता है, अगर नहीं मानता तो कुछ दाम दिया जाता है कि ठीक है तुम ये उपहार ले लो। जैसे पूरा राज्य युधिष्ठिर का था, श्री कृष्ण ने पहले समझाया, नहीं समझा तो दाम दिया कि ठीक है आधा ले लो, नहीं समझा अच्छा ले लो सब, केवल पांच गांव दे दो, ये दाम देना। और फिर भेद, भेद करने का प्रयास किया श्री कृष्ण ने, वहां जितने भी उपस्थित राजा थे उनसे कहा कि आप सब इसको मार डालो। धृतराष्ट्र को कहा ये नाश करेगा, यही आपके नाश का कारण बनेगा, तो फूट डालने का भी प्रयास किया श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण ने कहा मैंने साम दाम भेद सब कर लिया, अब केवल दंड बाकी है और अब उसको दंड मिलना चाहिए, इसीलिए युद्ध अवश्यंभावी है, युद्ध की तैयारी करो। और फिर युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, सात अक्षौहिणी सेना तैयार है, सातों अक्षौहिणी सेना के अलग अलग उन्होंने सात प्रमुख बनाए सेनापति, और फिर उनके ऊपर एक प्रमुख सेनापति बनाना था। तो अब ये इनकी ओर चल रहा था। और दूसरी ओर इधर जब श्री कृष्ण चले गए तो तुरंत दुर्योधन ने सलाह मशवरा किया अपने खास व्यक्तियों से, शकुनी दुशासन कर्ण, कि एक काम करो तुरंत युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि श्री कृष्ण यहां से क्रोध में गए हैं और वो वहां जाकर युधिष्ठिर से संधि की बात नहीं कहेंगे, युद्ध करने के लिए कहेंगे, इसीलिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो तैयारी शुरू करो युद्ध की, तो सारी सेनाओं को कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाना प्रारंभ करो। इधर जब श्री कृष्ण जैसे ही गए तो युधिष्ठिर ने विदुर को बुलाया, विदुर से पूछा कि ये जब तुमने देखा क्या करना चाहिए। धृतराष्ट्र का एक अच्छा गुण था, वो हमेशा विदुर से सलाह लिया करता था, इसीलिए बहुत समय तक बचा रहा। दुर्योधन किसी की सुनता नहीं था, यही उसके अंदर दुर्गुण था। तो देखिए इस प्रसंग में हम कितने ऐसी स्थिति में हमें समझना चाहिए कि हमेशा हमें अपने से वरिष्ठों के आदेश पर चलना चाहिए, सलाह पर चलना चाहिए। भक्ति मार्ग ये अकेले पालन करने का मार्ग नहीं है। एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते, अगर हम ऐसी भक्ति करते हैं, भले हरि की भक्ति हो भगवान की भक्ति हो, लेकिन एकांत की, एकांत की मतलब अपने मन से की गई भक्ति, अपनी इच्छा से की गई भक्ति, किसी दूसरे के अधीन न रहकर की गई भक्ति और शास्त्रों के विरुद्ध जाकर की गई हरि की भक्ति उत्पादेव कल्पते, केवल उत्पात मचाती है। इसलिए भक्ति भी हमें किसी के अधीन रहकर करनी चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण की भक्ति सदैव किसी के पालन करने से, किसी के पीछे पीछे चलकर की जाती है। वो कहते हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण ही यही है, कृष्णानुशीलनम अनुशीलनम, मतलब अनु मतलब पीछे पीछे चलना, आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना, इसको भक्ति कही गई है, शुद्ध भक्ति। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता था। धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया, विदुर से पूछा कि विदुर तुमने तो देख लिया कि क्या हुआ यहां पर, अब मेरे लिए क्या करने योग्य कार्य है। तो उस समय विदुर ने बड़े ही तीखे शब्दों में भर्त्सना की धृतराष्ट्र की। उन्होंने कहा अभी आपके लिए एक ही काम है महाराज, युधिष्ठिर को बुलाइए और उसका आधा राज्य उसको सौंप दीजिए, और कोई कार्य नहीं है। आपने ये अपराध किस मूर्तिमान स्वरूप, अपराध की मूर्ति ये दुर्योधन को आपने पाल रखा है और इसके कारण आप नरक में जाने के कारण भागी बनेंगे। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि जहां भी, क्योंकि आप एक अभक्त को, वो भगवान का भक्त नहीं है, आप एक अभक्त को संभाल रहे हैं, उसको बनाए रखे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, इसीलिए इस स्थान पर कुछ चीज शुभ नहीं हो सकती, सब कुछ अशुभ ही होगा। इसीलिए त्याग दीजिए ये भावना, युधिष्ठिर को राज्य दीजिए। तो जब दुर्योधन ने ये सुना, विदुर ऐसे कह रहे हैं, तो बड़े क्रोध में आ गया। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर किसी मूर्ख को अच्छी सलाह दी जाए तो वो क्रोध में आ जाता है। तो दुर्योधन मूर्ख था, लेकिन अच्छी सलाह को ले नहीं पाया। तो जब उसने देखा कि विदुर, क्योंकि अभी तो उसने तैयारी कर रहा था युद्ध की, और यहां विदुर आकर कह रहे हैं धृतराष्ट्र को वापस बुलाओ, युधिष्ठिर को बुलाओ और राज्य दे दो उसका, तो बहुत क्रोध में आ गया। और उस समय उसने बड़े ही तीखे शब्दों में विदुर का अपमान किया। उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा विदुर की ओर देखते हुए कि ये दासी पुत्र, अभी तक उनके मंत्री थे वो, विदुर को आदर से बुलाया जाता था, सारे भले वो दासी पुत्र थे, लेकिन आज तक धृतराष्ट्र ने भी उनका अपमान नहीं किया था दासी पुत्र कहकर। बड़ा सम्मान था विदुर का अपने ज्ञान के कारण। व्यक्ति का सम्मान उसके जन्म, उसकी जाति, उसके शरीर, उसके समाज से नहीं होता है, व्यक्ति का गुणगान उसके गुणों से होता है। और अगर हम थोड़ा सा ऊंचा जाएं तो व्यक्ति का सम्मान उसकी भक्ति के कारण होता है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितः। जिस व्यक्ति ने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है वो सच्चा महात्मा है। किसी के नाम के आगे महात्मा स्टैंप लगाने से वो महात्मा नहीं बनता, किसी को महात्मा बुलाने से वो महात्मा नहीं बनता। महात्मा वो होता है जो भगवान की दिव्य प्रकृति, दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है, अर्थात समर्पण करता है भगवान को। तो विदुर ऐसे महात्मा थे, इसीलिए उनको महात्मा विदुर कहा गया है। सच्चे महात्मा भगवान के भक्त हैं, उन्हें वो महात्मा कहलाने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि वो महान आत्माएं हैं। और क्या महानता है उनकी? उनकी महानता ये नहीं है कि उन्होंने इस जगत में थोड़ा धन कमा लिया, उनकी महानता ये नहीं है कि उन्होंने इस जगत में कोई पद प्राप्त कर लिया, उनकी महानता इसमें नहीं है कि उन्होंने इस जगत में कोई बहुत बड़ा विनाशकारी बम बना दिया। उनकी महानता इसमें है कि उन्होंने अपने जीवन को सफल किया, जीवन की पूर्णता श्री कृष्ण को प्राप्त करके। ये सच्ची महानता है, क्योंकि वो व्यक्ति फिर कभी इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसने वाला। जिस व्यक्ति ने विनाशकारी बम बनाया है, अगले जन्म में वही बम उसका नाश करेगा, फिर से जन्म लेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति कर ली, कृष्ण को समर्पण कर लिया, उसके लिए जन्म नहीं है। जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, कुंती महारानी कहती हैं, फिर से उसको इस भव सागर के दर्शन नहीं होते, न पुनर्भव दर्शनम। ये जो भव सागर है उसको फिर देखना नहीं पड़ता, एक बार अगर कृष्ण के दर्शन कर लेता। तो ऐसे विदुर थे महात्मा, इनको महात्मा कहा जाता है। तो दुर्योधन ने ऐसे विदुर, ऐसे महात्मा को, ऐसे महान व्यक्ति को, जिसने अपना सारा जीवन हस्तिनापुर के लिए दिया था, कभी हस्तिनापुर का बुरा नहीं चाहा, इतना कुछ हुआ, लेकिन वो छोड़कर पांडवों के पास नहीं गए, क्योंकि उनको प्रेम था धृतराष्ट्र से, हस्तिनापुर से, अपने कर्तव्य से। और फिर ऐसे व्यक्ति को दुर्योधन ने कहा ये दासी पुत्र है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ये शत्रु का जासूस है, हमारे टुकड़ों पर पलता है, हमसे लेता है धन, लेकिन बातें और इसका हृदय हमारे शत्रु की ओर है, इसको उठाकर बाहर फेंक दो और सब कुछ छीन लो इसका। केवल सांसों के साथ छोड़ना इसको, ऐसे। देखिए ये कितनी ज्ञान प्रदान करने वाली बात है। किसके साथ ये हो रहा है? विदुर, जिन्होंने कभी दुर्योधन का भी बुरा नहीं चाहा। जब वो कहते थे कि दुर्योधन को त्याग दो, तो द्वेष से नहीं। अगर युधिष्ठिर, अगर धृतराष्ट्र ऐसा कर देते तो दुर्योधन का भला होता। जिन्होंने कभी दुर्योधन का बुरा नहीं चाहा, हस्तिनापुर का बुरा नहीं चाहा, धृतराष्ट्र का बुरा नहीं चाहा, उनको कहा जा रहा है शत्रु का जासूस है, फेंक दो उठाकर बाहर, केवल सांसें रहनी चाहिए इसके पास। अर्थात बस मारो नहीं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्योधन की तो इच्छा थी कि विदुर को कोड़े मारे जाएं, इसीलिए उसने कहा सांसों के साथ छोड़ो, मतलब इतना मारो कि बस सांस लेने लायक रह जाए, इतना मारो उसको। तो ऐसा जब सोचिए, ऐसे महान व्यक्ति के साथ ही बड़े विचार करने योग्य प्रसंग है कि इतने महान विदुर जैसे व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति हो सकती है, जिसने कोई अपराध नहीं किया, दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसको फेंक दिया गया और कुत्ते आकर उसको खा रहे थे, दुर्योधन भगा रहा था कुत्तों को, वो तो ठीक था क्योंकि पापी है, अधर्मी है, सारा जीवन विरोध किया भक्तों का, भगवान का, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा होना ठीक है। लेकिन विदुर, महान भक्त, कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना। जब हमारे जीवन में कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, भले हमने कोई गलती की हो या ना की हो, तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हुआ? लेकिन यहां देखिए, और विदुर ने क्या किया, बहुत सुंदर वर्णन है भागवत में। विदुर ने देखा भगवान की बहिरंगा शक्ति का कार्य, कैसे बहिरंगा शक्ति ने प्रभावित किया है दुर्योधन को। प्रभुपाद, देखिए आचार्यों की टिप्पणियां क्यों आवश्यक हैं, तात्पर्य क्यों आवश्यक हैं। श्लोक में कहा गया कि विदुर ने भगवान की बहिरंगा शक्ति को कार्य करते देखा। कैसे? उन्होंने देखा कि कैसे अब दुर्योधन इतना प्रभावित हो गया है कि अब मेरे अच्छी बातों का कोई उपयोग नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए यहां से। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि विदुर ने अंतरंगा और बहिरंगा दोनों शक्तियों को कार्य करते देखा। कैसे? बहिरंगा शक्ति प्रभावित कर रही थी दुर्योधन को कि ये अपने अहंकार से उसने इतने महान व्यक्ति का अपमान कर दिया, लेकिन अंतरंग शक्ति में उन्होंने देखा कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं विदुर को कि जाओ और तीर्थ यात्रा करो। बहुत व्यस्त रहते थे, मंत्री थे, तो मंत्री के रूप में दिन भर आप सोच नहीं सकते मंत्री कितने व्यस्त रहते होंगे उस समय, और विदुर तो सबसे प्रमुख थे, तो सारे उनको कार्य संभालना, तो कभी तीर्थ यात्रा पे जाने का अवसर ही नहीं मिला। जब भी यात्राएं होती होंगी, जैसे कार्तिक आ रहा है, यात्रा जाना है, तो ये महाराज जा रहे यात्रा, तो विदुर को समय ही नहीं था किसी यात्रा पे जाने का। कभी कभी उसने रजिस्ट्रेशन किया भी होगा, कैंसिल करना पड़ा होगा, जा नहीं पाया, समय नहीं मिला उसको, छुट्टी नहीं मिली। लेकिन अब विदुर ने कहा बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई, अब तीर्थ यात्रा करूंगा आराम से। वैसे भी वो योद्धा नहीं है, युद्ध तो करने वाले नहीं है, तो इसीलिए अब आराम से तीर्थ यात्रा करूंगा। तो उन्होंने अपने धनुष बाण को रख दिया और फिर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। और वर्णन किया गया है कि कोई दुख नहीं हुआ विदुर को। देखिए महत्वपूर्ण बात, उनके हृदय में उनको रोष नहीं था, दुख नहीं था कि ये क्या कर दिया, जीवन दिया मैंने हस्तिनापुर के लिए और आज मुझे क्या मिला अंत में, ये सुनने को मिला कि चले जाओ, फेंक दो उसको उठाकर बाहर, ये चोर है, ये जासूस है, दासी का पुत्र है, बस यही सुनने मिला, जीवन भर की मेरी यही कमाई, नहीं, बड़ी प्रसन्नता से गए। अपना धनुष बाण था उन्होंने रख दिया दरवाजे पर कि ठीक है दुर्योधन अब तुम ही युद्ध करो, मैं तो चला, और फिर तीर्थ यात्रा को निकल गए। तो इधर विदुर चले गए तीर्थ यात्रा पर एक बहुत सुंदर संदेश हम सब के लिए देकर कि जीवन में जो कुछ होता है वो योजना है भगवान की। वैसे हम सब के जीवन में जब भी कुछ होता है तो उसके दो ही कारण हैं, एक हमारे कर्मों का फल और दूसरा भगवान की योजना। और आप ये जान लीजिए कि अभी हम लोग इतने शुद्ध नहीं हुए कि भगवान हम सीधे योजना बनाए हमारे जीवन में, तो फिर हमारे कर्मों का ही फल है। हाँ, लेकिन दूसरा कारण जैसे परीक्षित महाराज, उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाकर डाल दिया एक ऋषि के गले में, ये उनके कर्मों का फल नहीं है, ऐसे कौन से कर्म उन्होंने किए थे, तो महान भक्त हैं, आज तक कभी किसी ब्राह्मण का उन्होंने अपमान नहीं किया। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था और उस समय जो ब्राह्मण युधिष्ठिर को बता रहे थे कि ये कैसा बालक होगा, तो उन्होंने एक बात कह दी कि आगे चलकर ये ब्राह्मण का अपमान करेगा। युधिष्ठिर महाराज घबरा गए कि मेरे वंश में उत्पन्न होने वाला ये ब्राह्मण के प्रति अपराध करेगा, ऐसा कैसे हो सकता। तो देखिए ब्राह्मण या भक्तों के प्रति अपराध उस समय कितना घृणित माना जाता था। तो वो कोई कर्म का फल नहीं था, वो भगवान की योजना थी। भागवत प्रकट होना चाहते थे, भगवान चाहते थे भागवत प्रकट हो। तो इसीलिए विदुर ने ये मान लिया कि भगवान की योजना है और वो चले गए। तो अब विदुर चले गए, धृतराष्ट्र को अब समझाने वाला कोई नहीं, और यहां युद्ध की तैयारियां होनी शुरू हो गई। तो उधर पांडवों की तरफ भी युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। कार्तिक का समय था, कार्तिक की अष्टमी के दिन ये सारी क्रियाएं हो रही थी। कार्तिक की पूर्णिमा को सेनाओं ने कुरुक्षेत्र में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया था। युद्ध तो हुआ था एक डेढ़ महीने बाद, सेनाएं पहले से आई थी क्योंकि बहुत व्यवस्था करनी पड़ती। दुर्योधन ने आदेश दिया सारी व्यवस्था करो, रहने के स्थान बनाओ, गुप्त रास्ते बनाओ जिससे हम भोजन ला सकें ताकि शत्रु उसको कभी नाश नहीं कर सकें। तो जहां पर वे रहे थे वहां पे गुप्त रास्ते बनाए गए थे जिससे भोजन आता रहता था, नहीं तो शत्रु की योजना में एक योजना ये होती थी कि उनके भोजन को बंद कर दिया जाए, वैसे ही मर जाएंगे सब, खाने को नहीं मिलेगा, अगले दिन युद्ध क्या करेंगे। तो उसको बहुत संभाल कर लाया जाता था छुपा कर ताकि पता नहीं चले। तो गुप्त रास्ते होते थे उसके। तो दुर्योधन ने वो सब बनवाने शुरू किए, रहने के स्थान बनवाने शुरू किए इत्यादि आदेश दे दिया। तो कर्ण और दुशासन बड़े उत्साह में आ गए और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अब ये तैयारियां प्रारंभ हो गई, युद्ध की तैयारियां, और सेनाओं को अब लाया जा रहा था। और अब वर्णन किया गया भीष्म का। भीष्म जानते थे कि अब ये युद्ध हो रहा है। अब तक उन्होंने जीवन में कई निर्णय लिए थे लेकिन ये निर्णय बहुत कठिन था उनके लिए लेना। उनके पास तीन चुनाव थे, एक वो कौरवों की तरफ से युद्ध करें और मारे जाएं, दूसरा वो पांडवों की तरफ चले जाएं और धर्म की रक्षा करें क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर हैं। एक भक्त के रूप में, महाजन के रूप में, उनको तो धर्म को ज्यादा महत्व देना है। और तीसरा वो विदुर की तरह तीर्थ यात्रा पे चले जाएं, जैसे बलराम जी भी चले गए, आगे वर्णन आएगा। बलराम जी आए थे मिलने पांडवों को और उसके बाद वो तीर्थ यात्रा पर गए थे। तो तीसरा था कि वो भी चले जाए। तो भीष्म ने सोचा कि तीर्थ यात्रा मैं कर नहीं सकता इस समय क्योंकि मैं एक योद्धा हूं, विदुर क्षत्रिय नहीं है, वो योद्धा नहीं है, तो ठीक है वो जा सकते हैं लेकिन मैं तो योद्धा हूं, इसीलिए मेरे पास दो ही चुनाव है, या तो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करूं, अधर्म का साथ दूं, पापियों का साथ दूं केवल अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए, या फिर इस समय मैं पांडवों के तरफ चले जाऊं, भगवान की सेवा करूं, भले कुछ लोग मेरी निंदा करें लेकिन भगवान की सेवा हो जाएगी। तो भीष्म को बहुत बड़ा निर्णय लेना था जीवन का, और भीष्म इस समय अपने पूर्व जितने भी लिए गए निर्णयों का स्मरण करने लगे, उनके पूरे जीवन का वो स्मरण करने लगे, उस समय का कि जैसे पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया था शांतनु ने, इच्छा मृत्यु, जब तक नहीं चाहोगे मृत्यु नहीं होगी, इच्छा मृत्यु का वरदान। और आज भीष्म सोच रहे थे कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान ये श्राप बन गया मेरे लिए, अगर ये वरदान नहीं होता तो शायद कब का मर गया होता, मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। क्या क्या नहीं देखना पड़ा भीष्म को, भीष्म याद कर रहे हैं उस सब चीजों को। और ऐसे समय में भीष्म को सब याद आ रहा है, अपने जन्म से लेकर कैसे उन्होंने प्रतिज्ञा की सत्यवती का विवाह कराने के लिए, शांतनु से उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, बड़ी भीषण प्रतिज्ञा थी ये, क्योंकि भीष्म तो गए थे केवल उस समय देवव्रत नाम था, वो गए थे कि मेरे पिता चाहते हैं इनसे विवाह कराना, आपको क्या तकलीफ है बताइए, क्या कष्ट है। तो उन्होंने कहा कोई कष्ट नहीं है, मैंने तो बस इतना कहा कि जो इसका पुत्र होगा वो राजा बनेगा। भीष्म ने कहा अभी छोड़ता हूं मैं अपना राज्य पद, आज ही छोड़ देता हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा, जो भी इसका पुत्र होगा राजा बनेगा, ठीक है अब। तो उसने कहा ये बात तो ठीक है, आप पर मुझे विश्वास भी है, आप सत्यवादी हैं, लेकिन जो आपकी संतान होगी अगर उसने राज्य को मांगना शुरू कर दिया तब मैं क्या करूंगा, तब मेरी पुत्री के जो पुत्र होंगे उनको नुकसान हो जाएगा। देखिए कहां कहां का सोचते हैं व्यक्ति, अभी तो विवाह ही नहीं हुआ, उसके पुत्र और उसके पुत्र जो होंगे, पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन उन लोग यही हमारी कष्ट है। व्यक्ति जो धन कमाता है ना, संग्रह करता है यही सोच के कि मेरे पुत्र खाएंगे, उनके पुत्रों के लिए कुछ बना जाऊं, पता नहीं कहां कहां का सोचते हैं, अपने जीवन का तो कुछ पता नहीं है। तो ऐसे ये कार्य चलते रहते हैं कि आगे आगे हम जीवन चलाते रहें या पुत्र बनाते रहें। तो उसने उतना सोच लिया तो भीष्म ने वहीं पर घोषणा कर दी कि सारे देवता सुने, सब लोग सुने, सारी दिशाएं सुन लें, कि आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा। तो विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो राज्य को, तो इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। तो भीष्म उसको याद करने लगे कि कैसा कैसा समय आया, और फिर सारे निर्णयों को कि जब एक समय आया जब विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई, विचित्र वीर्य रहा नहीं, फिर उनकी पत्नियों से, तो उस समय सत्यवती ने भीष्म से कहा तुम राजा बनो, अब तुम्हें संभालना है। तो उसने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा ली है मैं कभी राजा बनूंगा नहीं, राज्य को संभालूंगा नहीं, राजा बनकर। तो ऐसे कई प्रसंगों को अपने जीवन में, और फिर पांडवों का जलाने का प्रयास किया गया, और उससे भी ज़्यादा उनको वो प्रसंग याद आया जब द्रौपदी ने प्रश्न किया था उनसे, जिस समय द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास हो रहा था, द्रौपदी ने भीष्म से प्रश्न किया कि आप तो बृहस्पति के शिष्य हैं, आप तो ज्ञान जानते हैं, सारे शास्त्र वेद जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है जानते हैं, आप बताइए कि जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके हैं तो क्या अधिकार है उन्हें मुझे दांव पर लगाने का, ये सही है या गलत है ये आप बताइए। सबके सामने उन्होंने भीष्म से पूछा था और भीष्म उत्तर नहीं दे पाए। भीष्म ने कहा था कि धर्म ये बड़ा जटिल है, एक दृष्टि से जो तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन दूसरी दृष्टि से जो धर्मराज युधिष्ठिर ने किया वो भी सही है। तो उस प्रसंग को याद कर रहे थे कि कैसे अपनी ही पुत्रवधु जो सामने खड़ी उनसे प्रश्न कर रही थी कि ऐसी अवस्था में आप बताइए, वो उत्तर नहीं दे पाए ठीक से, और उनको निर्णय लेना पड़ा, कौरवों के साथ रहना पड़ा। उस समय भी विरोध नहीं कर पाए क्योंकि बंधे हुए थे अपनी प्रतिज्ञा से भीष्म। तो भीष्म उसको याद करने लगे उन सारे प्रसंगों को। और अब उनके लिए निर्णय लेना था कि ये सबसे बड़ा निर्णय है एक भक्त के लिए। महाजन हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कई प्रसंगों में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कह चुके हैं। राजसूय यज्ञ हो, कहीं भी हो, उन्होंने स्थापित किया कि श्री कृष्ण भगवान हैं। और आज उन्हें निर्णय लेना है कि उनके विरुद्ध लड़ें या उनके साथ में रहें। और वो जानते थे कि उनको ज्यादातर निर्णय लेना पड़ेगा विरुद्ध लड़ने का। आगे चलकर जब दसवें दिन का वर्णन करेंगे युद्ध के, जिस दिन भीष्म बाणों की शैया पर गिरते हैं, उस दिन हम ये देखेंगे कि क्या भक्ति थी भीष्म की। कोई साधारण भक्त नहीं है भीष्म। और फिर उनकी भक्ति प्रकट होगी उस समय। दसवें दिन तो वो बाणों की शैया पर गिरे, उसके 53 दिवस बाद प्राय 2 महीने तक वो रहे बाणों की शैया पर। उसके बाद जब उन्होंने अंतिम ज्ञान दिया युधिष्ठिर को, और उसके बाद प्रार्थनाएं अर्पण की अपनी श्री कृष्ण के प्रति, वो दर्शाएगा कि कितने महान भक्त हैं। जिस समय भीष्म बोलने वाले थे बाणों की शैया से, श्री कृष्ण आए हुए थे, पांडव आए हुए थे, उस समय सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए, स्वयं उनके गुरु परशुराम जी आए सुनने के लिए, क्या मेरा शिष्य बोलने वाला है। ये महानता है भीष्म की। व्यासदेव आए, परशुराम जी अपने शिष्यों को लेकर आए, उन सभी शिष्यों को जो विरोध करते थे भीष्म का। परशुराम जी के कुछ शिष्य कहते थे, भीष्म आपका कैसे अच्छा शिष्य हो सकता है, उसने आपकी बात नहीं मानी, आपने कहा अंबा से विवाह करो, उसने विवाह नहीं किया, युद्ध किया आपसे, अरे कैसा शिष्य है आपका। उन सारे शिष्यों को लेकर आए थे परशुराम जी दिखलाने के लिए कि देखो भीष्म कैसा शिष्य है मेरा, देखो उसकी महानता, देखो उसकी भक्ति। तो ऐसी भक्ति प्रकट होगी आगे। लेकिन आज वही भीष्म वो निर्णय ले रहे हैं श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का। तो समय आया, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों के पास, और हरेक का एक एक सेनापति बनाया गया, और उसके बाद अब प्रमुख सेनापति बनाना था। और उससे पहले कर्ण ने घोषणा कर दी कि अगर भीष्म युद्ध करेंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन के तो सिर पे जितने बाल थे वैसे ही निकल गए होंगे कि ये क्या, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ और आपस में युद्ध शुरू हो गया। कर्ण का मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत उससे पहले बहुत कुछ हुआ था, अभी इतना विस्तार में वर्णन नहीं। और पहले से ही भीष्म हमेशा कर्ण को कुछ ना कुछ कहते आए थे, और अब इतना हो गया कि कर्ण ने कह दिया मैं नहीं। दुशासन को भेजा कर्ण के पास दुर्योधन ने, जाओ समझाओ उसको। तो दुशासन बहुत समझा कर आए, जब वापस आए तो दुर्योधन ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा, कर्ण ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं इसे नहीं बदलूंगा, जब तक भीष्म है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुशासन ने कहा, कर्ण तो हमारे लिए बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि भीष्म तो मरने वाले नहीं है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो भीष्म मरेंगे नहीं, वो युद्ध करते रहेंगे, और ये कर्ण तो युद्ध ही नहीं करेगा। तो पूरा विस्तार से बताया, तुमने समझाया नहीं। बोले मैंने समझाया, मैंने गुणगान भी किया, भीष्म देव का भी गुणगान किया कि वो बड़े वृद्ध हैं, बड़े अच्छे योद्धा हैं, उनको सहयोग करो। तो नहीं माने। तो दुशासन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता भीष्म जाके थोड़ा माफी मांग ले कर्ण से। दुर्योधन कहते, क्या बात कर रहे हैं भीष्म और जाकर माफी मांगेंगे, हो ही नहीं सकता। एक तो वो इतने वृद्ध हैं, दूसरे वो कभी किसी कर्ण के सामने तो कभी नहीं जाएंगे, झुकेंगे नहीं। तो खैर, दुर्योधन के लिए निर्णय ये लेना था कि या तो वो भीष्म को प्रमुख सेनापति बनाए या फिर किसी और को। लेकिन दुर्योधन बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, उसका दिमाग बहुत चलता था राजनीति में। इसीलिए देखिए भगवद गीता में जब वो द्रोणाचार्य के पास जाता है तो द्रोणाचार्य के सामने जब वो गुणगान करने लगता है कि हमारी सेना में कौन कौन है, तो सबसे पहले द्रोणाचार्य का वर्णन करता है, भवान भीष्मश्च, भवान यानी आप हैं और भीष्म हैं। तो क्यों पहले उनका वर्णन करता है? क्योंकि वो जानता था कि अगर पहले भीष्म का वर्णन करेगा तो हो सकता है द्रोणाचार्य थोड़ा नाराज हो जाए। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों का स्तर ऊंचा होता है क्षत्रिय से, और द्रोणाचार्य को दुखी नहीं करना चाहता था। हालांकि द्रोणाचार्य भीष्म से बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर द्रोणाचार्य का पहले वर्णन होता है तो भीष्म बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मणों का पहले वर्णन किया जाता है। इतना बुद्धि चलाता था बोलते समय भी वो। तो दुर्योधन ने बुद्धि चलाई कि अगर मैंने भीष्म को नहीं बनाया तो ये बाकी लोग कोई युद्ध नहीं करेंगे मेरे लिए, क्योंकि द्रोणाचार्य वगैरह किसी के अधीन क्यों युद्ध करेंगे, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा, ये छोड़ के चले जाए, भीष्म है तो कोई मना नहीं करेगा। और वैसे भी दुर्योधन ये सोच रहा था कि अगर मेरी जीत हो सकती है तो केवल भीष्म के कारण। इसीलिए भगवद गीता के प्रारंभ में अपने सारे लोगों का वर्णन करने के बाद दुर्योधन क्या कहता है, आप सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर भीष्म की रक्षा कीजिए। क्यों उसने नहीं कहा मेरी रक्षा कीजिए, द्रोणाचार्य की कीजिए, कृपाचार्य की नहीं, भीष्म की? क्यों? क्योंकि अगर कोई जीत सकता, मुझे विजय दिला सकता है तो वो केवल भीष्म है। और ये एक कारण था भीष्म ने दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया। एक महाजन होते हुए, एक भक्त होते हुए, क्या भीष्म ने ये नहीं सोचा कि आने वाले लोग मेरी निंदा करेंगे, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि एक महाजन होते हुए उन्होंने तीर चलाए कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के भक्तों के ऊपर? भीष्म ने उसको स्वीकार किया। क्यों? भगवान की योजना मानकर, भगवान की इच्छा को मानकर। एक भक्त भगवान की इच्छा को जानते हैं, हृदय को जानते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, रूप गोस्वामी के लिए कहा गया है कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानते थे। तो जो एक भक्त होता है वो महाप्रभु या भगवान के हृदय को जानता है। अगर भीष्म नहीं होते इनकी ओर तो दुर्योधन कभी युद्ध नहीं करता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन भीष्म को क्षमा करने के लिए कहते हैं, वो भगवान से कहते हैं दूसरे अध्याय में, गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयोन भोक्तुम भैक्षमपी हलोके। वो कहते हैं, साधारण उसका अगर अनुवाद किया जाए तो ये था कि गुरुन हत्वा, गुरु को मारकर राज्य लेने से अच्छा है मैं भीख मांगने चला जाऊं, भैक्षमपी हलोके। लेकिन आचार्यों ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, अर्जुन इस समय भीष्म का वर्णन कर रहा है, वो कह रहा है गुरुन हत्वा हि महानुभावान, तो उन्होंने उसको थोड़ा तोड़ने में चेंज कर दिया। जैसे संस्कृत में संधि विच्छेद होते हैं तो संधि और विच्छेद अलग अलग जगह पर करने से उसके मतलब बदल जाते हैं। तो वहां वो कहते हैं ही महानुभावान नहीं, हिम अनुभावान। हिम मतलब बर्फ और अनुभावान मतलब उसको पिघलाने वाला, सूर्य। हिम को पिघलाने वाले को सूर्य कहा जाता है। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भीष्म उस तरफ हैं लेकिन वो सूर्य की तरह हैं। सूर्य जब अच्छी जगह पर अपनी किरणें डालता है तो भी उसको कोई प्रभाव नहीं होता, और मल पर भी अपनी किरणें डालता है तो उसको कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सूर्य की किरणें अगर मल पर गंदी जगह पर पड़ जाएं तो सूर्य दूषित हो जाता है। इसीलिए हे कृष्ण, भीष्म हिम अनुभावान सूर्य की तरह हैं, इसलिए उनको क्षमा करना चाहिए। मैं उनको मारने से अच्छा भिक्षम अपी है लोके, भीख मांगना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं। तो भीष्म भगवान के भक्त होते हुए भी दुर्योधन की तरफ केवल इसीलिए थे क्योंकि भगवान की इच्छा थी। इसीलिए जिस दिन भगवान ने चक्र उठा लिया युद्ध में भीष्म बहुत तीव्रता से युद्ध कर रहे थे, आंधी तूफान जहां से निकल जाते लाशों के ढेर लग जाते, कोई रोक नहीं पा रहा था भीष्म को। और उस समय अर्जुन ने भी प्रयास किया, अर्जुन भी नहीं रोक पा रहा था, भगवान क्रोध में आ गए और भगवान ने कहा अर्जुन तुम जान मुझ के नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हो, तुम इनको मारना नहीं चाहते हो। अर्जुन ने कहा नहीं मैं पूरी शक्ति से लड़ रहा हूं। कृष्ण ने कहा नहीं, और फिर उन्होंने कहा तुम नहीं मारोगे तो मैं ही मार देता हूं। तो भागे, रथ का एक पहिया गिरा हुआ था लेकर भागे भीष्म की ओर। और उस समय भीष्म ने यह दिखलाया कि भीष्म ने क्या किया, चाहते तो तीर से उस रथ के पहिए को तोड़ सकते थे, चाहते तो कृष्ण को मार सकते थे, अर्जुन को मार सकते थे, लेकिन भीष्म ने क्या किया, बहुत सुंदर वर्णन है। अपने दोनों हाथ अपने मस्तक पर लगा लिए भीष्म ने, अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए और श्री कृष्ण से कहा दासोस्मि, आज तक आप चाहते थे कि मैं युद्ध करूं, दुर्योधन की ओर से मैंने युद्ध किया, आज आप कह रहे हैं, क्योंकि जब भगवान भागे तो भगवान कह रहे थे दो बार उन्होंने कहा हंताम हंताम मार दूंगा मार दूंगा। तो भीष्म ने कहा आज आपकी इच्छा है कि मैं मरूं, तैयार हूं मैं। ये भक्त है, भक्त अपने मान अपमान को नहीं देखता, भगवान की इच्छा को देखता। भीष्म ने यह नहीं सोचा कि आने वाले लोग इतिहास के पन्ने मुझे निंदा करेंगे, उन्होंने ये सोचा कि मुझे भगवान की इच्छा पूर्ण करनी है। और इसीलिए भीष्म ने दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना का निश्चय किया। अब उनको प्रमुख सेनापति बनाया गया, दुर्योधन ने सभा बुलाई, सभी के सामने प्रस्तुत किया कि हम भीष्म को अपने प्रमुख सेनापति के रूप में उनको स्थापित करते हैं। और अब भीष्म ने बोलना शुरू किया। अब आप सोचिए कि सेना के प्रमुख सेनापति हैं, उनको जब बोलना होता है तो उनको तो ऐसा भाषण देना चाहिए कि सारी सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाए, और भीष्म ने उठकर वही किया। भीष्म ने घोषणा की मैं प्रण लेता हूं युद्ध में हर रोज हर दिन 10,000 सैनिकों को अकेले मारूंगा। छोटी बात नहीं है, 10,000 लोगों को अकेले, ये उन्होंने प्रण लिया कि अकेले मारूंगा। पांचालों को तो मैं पूर्ण रूप से समाप्त कर दूंगा, क्योंकि वो द्रुपद महाराज का जो पुत्र था वो धृष्टद्युम्न, तो पांचालों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन हां मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। प्रमुख सेनापति है और वो कह रहे मैं शत्रु को नहीं मारूंगा। अरे दुर्योधन तो सर पकड़ लिया उसने कि मेरे ही प्रमुख सेनापति बोल रहे मेरे ही शत्रु को नहीं मारेंगे तो क्या युद्ध जीतने वाले हैं। लेकिन फिर भी स्वीकार करना पड़ा दुर्योधन को। दुर्योधन बोल नहीं सका कि नहीं नहीं आप नहीं बनोगे, तो उन्होंने कहा मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, पांडवों का वध नहीं करूंगा, अगर अर्जुन या कोई भी पांडव मेरे सामने आए मैं उनका वध नहीं करूंगा, और ये जान लो दुर्योधन मैं शिखंडी का भी वध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा पांडव तो समझ में आते हैं, ठीक है आपके प्रिय हैं सब हैं, आप नहीं करेंगे, शिखंडी आपने तो खुद ही घोषणा की कि पांचालों को आप नाश कर देंगे, फिर ये शिखंडी के सामने आने पर आप युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा क्यों कहा आपने। तो उस समय भीष्म ने शिखंडी का इतिहास बताया, अंबा की कथा, आप सब ये कथा जानते हैं इसीलिए इस कथा को नहीं कह रहे हैं। संक्षेप में कहते हैं उन्होंने कहा कि कैसे मैं हरण करके लाया था अंबा अंबिका अंबालिका का, और उस समय पर अंबा की इच्छा थी कि वो किसी और से विवाह करे, तो इसीलिए विचित्र वीर्य से उसका विवाह ना करके मैंने उसको वापस भेज दिया शाल्व नरेश के पास, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, उसने कहा कि नहीं तुम्हारा हरण हो गया मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तो अम्बा फिर मेरे पास वापस आई और अम्बा ने कहा आप विवाह करो, तो मैंने भीष्म ने कहा मैंने ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा ली हुई है मैं तो, लेकिन उसने कहा आप ही उठा के लाए थे आपकी गलती है, आप उठा के क्यों लाए, आप उठा के नहीं लाते मेरा उससे विवाह हो जाता, अब मैं उसके पास गई हूं तो वो विवाह नहीं कर रहा है तो आप विवाह करो। भीष्म ने कहा ना मैं तो विवाह नहीं कर सकता। तो उस समय अंबा को बहुत ही बड़ा प्रसंग हम लोग चर्चा विस्तार से कर चुके हैं इसलिए नहीं कर रहे, तो अंबा को बड़ा क्रोध आ गया कि अरे ऐसे कैसे, तो अम्बा ने घोषणा कर दी कि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। देखिए इस जगत का प्रेम है ना, थोड़े समय पे कहले करिए विवाह कर लो, विवाह नहीं किया तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। बताइए कैसा कैसा प्रेम होता है इस जगत में। इस जगत का ऐसा ही प्रेम है, कंस का प्रेम, देवकी का विवाह हो रहा है, बहुत प्रेम। अरे ड्राइवर मैं बनूंगा, चिंता मत करो, तो रथ मैं चलाऊंगा। रथ चलाना कोई राजाओं का कार्य नहीं है, तो सारथी होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो चलाते हैं। अरे हटा दिया, नहीं नहीं मेरी बहन का विवाह मैं लेके जाऊँ, बड़ा प्रेम दिखा रहा है। और जहां घोषणा हो गई कि मूर्ख कंस, इस देवकी का आठवां पुत्र तेरा वध करने वाला है, तलवार निकल गई, बाल पकड़ ली, अभी इसको ही मार देता हूं, सारा प्रेम चला गया। ये इस भौतिक जगत का प्रेम है। जब तक हमारी इच्छाएं उस व्यक्ति से पूर्ण होती रहें, जब तक वो व्यक्ति मेरे अनुसार मेरी इच्छा के लिए मेरे लाभ के लिए कार्य करता रहे, मुझे उससे प्रेम है। लेकिन जहां वो व्यक्ति मेरे लाभ में बाधा बने, मेरे भोग में बाधा बने, मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बने, वो मेरा शत्रु है। हमारे मित्र और शत्रु का आधार केवल इतना ही है कि कौन मुझे आनंद दे रहा है और कौन मुझे कष्ट दे रहा है, वो हमारा मित्र और शत्रु हो जाता है। तो खैर अम्बा ने कहा मैं मृत्यु का कारण बनूंगी, चली गई, तपस्या की, वन में गई, सब कर लिया। तो सब ऋषि मुनियों ने देखा, पूछा भाई क्या बात है, तुम स्त्री होकर यहाँ क्यों आई, क्या कारण है। उसने कहा मुझे भीष्म का वध करना है। अरे भीष्म का वध क्यों, सारे ऋषि मुनि जानते थे भीष्म को, बोले उसका क्यों वध करना है, उसने मेरे से विवाह नहीं किया। तो विवाह ही करना है ना। हाँ विवाह करना है, ठीक है परशुराम जी के पास जाओ, उनके शिष्य हैं भीष्म, परशुराम जी कहेंगे विवाह कर लेंगे। ठीक है परशुराम के पास गई, परशुराम जी ने पूछा क्या बात है, तो बोले मुझे विवाह करना है। किससे, भीष्म से। तो क्या बात है, मना कर रहा है, मना कैसे, चलो मेरे साथ। तो आ गए परशुराम जी लेकर। अब परशुराम जी हस्तिनापुर में आए हैं, भीष्म को पता चला, ये सारी बातें भीष्म दुर्योधन को बता रहे हैं उस समय कि क्यों मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा। अब परशुराम जी आए हैं, भीष्म ने स्वागत किया, गायों को आगे रखकर तुरंत गए, उनका आदर सत्कार किया, उनकी पाद पूजा की, बड़े प्रसन्न हुए परशुराम जी। भीष्म ने हाथ जोड़कर पूछा बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम है, बताइए, ये अम्बा है इससे शादी कर लो। भीष्म ने कहा ये तो हो नहीं सकता। अरे परशुराम जी क्रोध में आ गए, उनको कोई मना कर दे परशुराम जी को, और वो भी एक क्षत्रिय। परशुराम जी क्रोध में आ गए, ऐसे कैसे, क्यों नहीं विवाह करो, मैंने तो वचन लिया हुआ, तो फिर उठा के क्यों लाए थे, मैं अपने लिए नहीं लाया था, भाई के लिए लाया था, और वैसे भी ये वापस चली गई थी वहां पर, अब उसने नहीं लिया तो क्या गलती है। तो ऐसे बहुत सारा संवाद हुआ। परशुराम जी ने बोला अरे मैं बोल रहा हूं तुम्हें, तो परशुराम जी गुरु हैं, गुरु से सीखा। तो परशुराम जी बड़े क्रोध में आ गए, बहुत समझाया भीष्म ने, अरे आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, आप सुनिए। तो अरे नहीं, परशुराम जी किसी की सुनने तैयार हैं। फिर भीष्म को भी क्रोध आ गया। भीष्म ने कहा इतनी देर से आपको आराम से समझा रहा हूं क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और आप इतने महान व्यक्ति हैं, मैं आपके प्रति अपराध नहीं करना चाहता, लेकिन शास्त्र कहता है कि जब गुरु भी गलत मार्ग पर जाने लगे तो उसको त्याग देना चाहिए, और इसीलिए अब आपको मैंने बहुत समझा दिया, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है युद्ध कीजिए, अगर मैं मारा भी गया तो ठीक है लेकिन मैं युद्ध करूंगा। क्योंकि परशुराम जी ने उनसे कहा कि या तो इससे विवाह करो या युद्ध करो। भीष्म ने कहा युद्ध करना अच्छा है। तो भीष्म युद्ध करने के लिए तैयार हो, और कई दिनों तक युद्ध हुआ, उस सारा वर्णन उन्होंने किया, और फिर अंत में परशुराम जी प्रसन्न हुए और अम्बा से उन्होंने कहा भाई ये तो मानने वाला नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। तो अम्बा ने जाके बड़ी तपस्या की, शिव जी से वरदान प्राप्त किया, और फिर अगला जन्म उसने शिखंडी के रूप में लिया, और पहले वो स्त्री थी और बाद में पुरुष हो गए। तो भीष्म ने कहा मेरा ये वचन है कि मैं किसी स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाता, मैं नहीं चलाऊंगा, और कोई स्त्री अगर पुरुष में बदल गई है उसके ऊपर भी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वो स्त्री है, तो मैं स्त्री पर वार नहीं कर सकता। वैदिक सभ्यता के अनुसार बालकों का, वृद्धों का, स्त्रियों का, गायों का और ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए किसी भी अवस्था में। तो उनके संरक्षण उनको प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इससे सभ्यता बनी रहती है। बच्चों का रक्षण करने से आगे आने वाली पीढ़ी का रक्षण होता है, और स्त्रियों का रक्षण करने से आगे आने वाली संतानें अच्छी होती हैं, वृद्धों का रक्षण करने से परंपराएं बनी रहती हैं, गायों का रक्षण करने से हमें यज्ञ के लिए सारी सामग्री मिलती रहती है, और ब्राह्मणों का रक्षण करने से वैदिक ज्ञान बना रहता है, इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसा उन्होंने कहा, इसीलिए मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा। और बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे अपने भाषण में या अपने प्रवचन में भीष्मदेव ने कही जो दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। इन बातों को अगली बार महाभारत की क्लास में आपको सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी समय काफ़ी हुआ है तो प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, भगवान के दर्शन हो जाएं। अगर किसी का एकाध कोई प्रश्न है इतना महत्वपूर्ण कि अगर वो नहीं पूछेंगे तो उनको रात को नींद नहीं आएगी, कोई पूछ सकते हैं। यस, आपको नींद नहीं आएगी।
हरे कृष्ण जी,
हरे कृष्ण। भीष्म पितामह ने परशुराम जी को हराया। उनका युद्ध 13 दिन तक चला, एक दिन नहीं, और कोई भी नहीं हार रहे थे, ना परशुराम जी ना भीष्म। और उस समय देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने आकर दोनों को समझाया, इस तरफ भीष्म को समझाया, उस तरफ परशुराम जी को। परशुराम जी से कहा, आपका ही शिष्य है, क्यों आप इतना, और कोई गलत बात तो नहीं कह रहे। परशुराम जी को कहा, भीष्म को कहा कि तुम्हारे गुरु हैं, ठीक है, कुछ हो गया तो हो गया, 13 दिन युद्ध कर लिया, अब बंद करो। तो दोनों के समझाने से फिर दोनों ने त्याग छोड़ दिया था। परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए थे उसकी कला को देखकर, तो उसने उन्होंने दरअसल उस युद्ध के द्वारा अपने गुरु को प्रसन्न किया, हराया नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? ठीक है, तो अभी कीर्तन करेंगे। अच्छा।